मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। दोस्तों फिलहाल हम लोग बल विषय पर बात कर रहे हैं, बल यानी कि शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर। और मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत एक छोटे से शब्द से हुई थी और वह था आत्मबल। लेकिन इस विषय के प्रति जो आप सबने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की उससे मेरा उत्साह बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, एक नया सा विषय हाथ आया है और इस पर विस्तार से बातें करनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा संबंध और बहुत गहरा संबंध हमारे जीवन से है। आपको याद होगा कि कल मैंने अपनी बात सहन शक्ति पर जाकर खत्म की थी। अब देखिए, शक्ति तो एक प्रकार से संतुलन का साधन है जिस पर हम लोग आगे चल करके बात करेंगे, लेकिन जो सहन शक्ति है वो एक अलग किस्म की शक्ति है, सहने की शक्ति, और ये कम बड़ी शक्ति नहीं है। इसको लेकर के मुझे बहुत से मेल मिले हैं और सच पूछे तो उन सब ने अपनी जिज्ञासाओं के साथ साथ अपना संदेह भी व्यक्त किया है और इसका मैं स्वागत करता हूं। संदेह इस बात को लेकर के है कि सर, हम क्या किसी गलत बात को भी बर्दाश्त करते रहें? इससे हमारे ईगो का क्या होगा? इससे तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। क्या यह सही है? इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। ठीक है, हम लोग इन सब बातों को लेकर के कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब भी बरसात के दिन आते हैं तो मुझे रामचरित मानस का एक छोटा सा जो प्रसंग है वो याद आ जाता है। और वो प्रसंग ये है कि रावण सीता का हरण करके ले गया है, राम लक्ष्मण अकेले पड़ गए हैं, बरसात शुरू हो गई है और राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे हैं। तो इस बीच में राम जो प्रकृति का दृश्य है उसे देखकर कुछ बातें लक्ष्मण के साथ शेयर करते हैं। उसमें उन्होंने एक जो बात कही है लक्ष्मण से, वो मैं आप लोगों के सामने यहां रखना चाहूंगा। और हो सकता है कि यहां शायद जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं उसे समझने में आपकी कुछ मदद भी हो। भगवान श्री राम कहते हैं, जब बारिश हो रही है और उस बारिश को देख करके कह रहे हैं कि देखिए, बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। यानी कि जो बूंदे हैं पानी की, मोटी मोटी बूंदे पर्वतों पर गिर रही हैं, पर्वतों पर गिर रहे, पट 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 पर आवाज आ रही है। उसे देख करके भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो कि ये बूंद के जो आघात हो रहे हैं, इनका जो प्रहार हो रहा है पर्वतों पर, तो पर्वत इनके इस प्रहार को कैसे सह पा रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं? और फिर वो उत्तर स्वयं देते हैं कि खल के वचन संत सहे जैसे। जिस प्रकार दुष्ट व्यक्तियों के जो वचन होते हैं, कड़वे बोल होते हैं, आघात पहुंचाने वाले शब्द होते हैं, मारक वचन होते हैं, जैसे उन वचनों को संत लोग सह लेते हैं, ठीक इसी तरह से ये जो पर्वत हैं, ये बूंदों के आघात को बर्दाश्त कर रहे हैं। खल के वचन संत सहे जैसे। तो दोस्तों, ये संत क्या है? संत सम के आसपास का शब्द आपको नहीं लगता? जिसके अंदर का सब कुछ सम सा हो गया हो, वो संत के करीब पहुंच गया है या संत ही हो गया है? और ऐसा होता है। हां, जब हम स्वाभिमान को लेकर के चलते हैं, अपने ईगो को लेकर के चलते हैं, तब अंदर से बड़ी छटपटाहट होती है, क्योंकि जब हमारा ईगो गायब होने लगता है तो हमें लगता है कि हम ही गायब हो रहे हैं, फिर तो हमारी पहचान ही क्या रह जाएगी। और सच यह है कि जिस दिन आपका ईगो गायब हो जाता है उसी दिन हम सही मायने में अपने आप को पा पाते हैं। ईगो हमें अपनी पहचान को पाने से रोकता है, क्योंकि ईगो ही हमारी पहचान बन जाता है। मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, तो अफसरी का ईगो है, तो मैं अफसर हूं ना, तो मैं कहां हूं? सोच करके देखिए, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, बहुत पैसे वाला हूं, मुझे अपने पैसे का ईगो है, तो मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान एक व्यक्ति के रूप में तो नहीं, मेरी पहचान एक पैसे के रूप में होगी। जिस दिन पैसा गायब हो जाएगा मेरी पहचान भी गायब हो जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो ईगो है, इस ईगो ने आकर के मेरी पहचान मुझसे छीन ली है? और संत क्या कर रहा है? संत अपनी पहचान में ही जी रहा है। दोस्तों, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। और उस समय भगवान श्री राम ने और भी प्रकृति की दूसरी दूसरी घटनाओं को देख करके बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं। और कोई भी बरसात ऐसी नहीं होती जब बरसात हो रही हो, और मुझे रामचरितमानस का ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा प्रसंग याद न आ जाता हो। खैर, तो दोस्तों, सहन शक्ति हमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह हमारी कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन सच पूछिए तो यह हमारे आंतरिक संतुलन का प्रतीक है, प्रमाण है। और मैं यह मान करके चलता हूं कि जो बल है, जो शक्ति है, वह मूलतः संतुलन स्थापित करने का ही एक कारक है, एक फैक्टर है, संतुलन स्थापित करने का फैक्टर है। किसी को पराजित करने का फैक्टर नहीं है कि मुझे उसे हराना है, एक संतुलन स्थापित करना। मैं डरता हूं तो मेरे अंदर एक शक्ति आ गई, मेरा डर गायब हो गया, मेरे अंदर संतुलन आ गया। चारों ओर अंधेरा 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 फैला हुआ है, अंधेरे का भय है, मुझे इस भय से मुक्ति पानी है, तो मैंने एक मोमबत्ती जला दी या अज्ञान को ज्ञान से प्रकाशित कर दिया, संतुलन स्थापित हो गया, मेरी आंखें अब अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, तो ये जो प्रकाश है मेरे लिए शक्ति है। मैं इसे इस रूप में लेता हूं, शक्ति यानी कि संतुलन स्थापित करने वाला एक बहुत ही प्रबल सकारात्मक तत्व। तो दोस्तों, इस पर और आगे बात करेंगे। आप सब भी अपनी अपनी जिज्ञासाएं और अपने अपने ढंग के जो निष्कर्ष हों वो लिख करके भेजें, बात करने में तब फिर और ज्यादा मजा आएगा और जीवंतता भी आएगी। और अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।